책임 선행 및 고결성
우리 as a country set and act upon these values.
대단과
One of the sacred covenants
I lie allow for the body
and enjoy the blessings of exaltation.
We are delighted to welcome you.
सुंदर शाम को यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों की महाजवान औरतों की सभा में हम तुम्हें खुशी से स्वागत करते हैं। हम तुम्हारे उज्जवल चेहरों को देखने और तुम्हारी महान आत्माओं को महसूस करने के लिए राह देख रही थी। तुम शक्तिशाली और प्रभावशाली पीढ़ी हो जिन पर हमारी बहुत आशा है। प्रधान गोरन भी हिंकली जो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं ने कहा कि मैं सिस्टर डब्ल्यू टेना संचालन करो। हमारा सौभाग्य है कि हमारे परमप्रिय भविष्य प्रधान गोरन बी हिंकली और प्रेजेंट थॉमस एस मॉनसन और प्रेजेंट जेम्स ई फाउस्ट 12 देवदूत के परिषद के एल्डर जेफरी आर हॉलैंड और डेविड ए बेडना और 70 के एल्डर जॉन बी डिक्सन और स्टीवन ई स्नो है। इन प्रत्येक पुरोहित नेता को ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है उनके सेवा के लिए। मंच पर बेटी है मेरे सलाहकार बहनें जूली बी बेक और इलेन डेल्टन। सहायक संस्था और प्राथमिक महाअध्यक्षों और जवान औरतों की महाप्रबंध परिषद की भारों की उपस्थित के लिए हम आभारी हैं। इस सभा का संगीत प्रोवो यूटा क्षेत्र की जवान औरतों की गायक मंडली द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा जिसका निर्देशन मेरली वेब करेगी। उसके साथ लिंडा मागेट्स ऑर्गन पर रहेगी। गायक मंडली हमारी सभा की शुरुआत करेगी आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड के साथ, मेरी वुड लैम्प्रोस के साथ फ्रेंच हॉर्न पर टेम्पल स्क्वायर के ऑर्केस्ट्रा की सदस्य। प्रार्थना की जाएगी हिलरी ऑल्सन द्वारा जो एल्पाइन यूटा स्टेक की है।
Dear Heavenly Father,
हमारे पिता परमेश्वर हम आभारी है इस शाम को यहाँ इकट्ठा होने के लिए. हम आपसे मांगते हैं कि आपके पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे और जितने शब्द आज बोलेंगे कि हम उसे समझ पाए और जैसे हम यहाँ से जाए कि हम आपके पुत्र के तरह जी सके. हम आभारी हैं आपके पुत्र के अटोनमेंट के लिए. हम खास के आभारी हैं हमारे प्रोफेट के लिए और हम आभारी हैं अपने सारे ब्लेसिंग्स के लिए और हम आपसे प्यार करते हैं यीशु मसीह के नाम से. आमेन.
It will now be my
अब मेरी बारी है तुमसे बात करने का. मेरे भाषण के बाद गायक मंडली गाएगी इफ द सेवियर स्टूड बिसाइड मी. हमारे दामाद ने अपनी बेटी 3 वर्षीय इलाइजा से कहा कि घरेलू पारिवारिक शाम सभा के लिए वो एक बहुत विशेष विषय पर एक पाठ करेगा. उसके चेहरे पर एक बड़ा मुस्कान आया और उसने आश्चर्य की घटना का अनुमान लगाने की कोशिश की. वो मेरे विषय में होगा, उसने कहा. इलाइजा याद कर सकती और जानती है कि वो कौन है. उसने ये अपने माँ से सीखा जो इलाइजा को छोटे से आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड गाना रात को गाती थी. दुनिया भर में और लगभग प्रत्येक भाषा में जवान औरतें जिनका उम्र 12 से 18 की है वो वही चीज घोषित करती है. हम बेटियां हैं अपने स्वर्ग के पिता की जो हमसे प्यार करते हैं और हम उसे प्यार करते हैं. फिर भी जब वो बड़ी होती है वो बहुत निश्चय ज्ञान खो देती है. उस 3 वर्षीय इलाइजा की को वो बहुत विशेष है. युवा बहुधा अनुभव करते हैं पहचान संकट की वो वास्तव में कौन है. युवक के समय वर्णन करती हूँ पहचान चोरी मतलब कि संस्कारी विचार धरनी और धोखे हमें भ्रम में डालता कष्ट पहुँचाते और ढूंढते हैं हमारी सच्ची पहचान की ज्ञान को हमसे चुराना लिया. एक बहुत अच्छी जवान औरत ने मुझसे कहा कभी कभी मैं निश्चित हूँ कि मैं कौन हूँ. मैं स्वर्ग पिता का प्यार महसूस नहीं करती. मेरा जीवन कठिन लगता है. चीजें उस तरह नहीं होती जैसे मैं चाहती आशा करती और सपना देखती हूँ. जो मैंने उससे कहा मैं अब सभी जगहों की जवान औरतों से कहती हूँ मैं साफ कहती हूँ कि तुम ईश्वर की बेटी हो. वो तुम्हें जानते हैं, वो तुमसे प्यार करते हैं और उनके पास तुम्हारे लिए योजना है. मैं जानती हूँ कि ये वो संदेश है जिसे स्वर्ग पिता चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बांटूं. अंतिम दिनों के भविष्यवक्ता और देवदूत हमारे दिव्य स्वभाव की गवाही देती है. परिवार पर दुनिया के कई घोषणा कहती है प्रत्येक स्वर्गीय माता पिता के परम प्रीति आत्मिक पुत्र या पुत्री है और उसी रूप में प्रत्येक के पास दिव्य स्वभाव और भाग्य है. और प्रधान गोर्डन बी हिंकली ने भी कहा तुम किसी से दूसरे स्थान पर नहीं हो. तुम ईश्वर की बेटियां हो. वो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो सुंदर और पवित्र और दिव्य है. वो कभी मत भूलना. तुम्हारे अनंत पिता सृष्टि के महान मालिक है. वो सभी पर राज्य करते हैं पर वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनेगा अपनी बेटी के रूप में और तुम्हें सुनेंगे जब तुम उनसे बात करोगी. वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को जवाब देंगे. वो तुम्हें अकेले नहीं छोड़ेंगे. वो ज्ञान की तुम ईश्वर की बेटी हो जब तुम उसे अपने आत्मा में रखोगी वो तुम्हें आराम देगा तुम्हारे विश्वास को मजबूत करेगा और तुम्हारे आचरण पर प्रभाव डालेगा. अगर तुम इस नैतिक गुण वाली सच्चाई को तुम्हारे विचारों को निरंतर सजा दोगी ईश्वर की उपस्थिति में तुम्हारे पास आत्मविश्वास होगा. हम प्रत्येक कैसे जान और महसूस कर सकते हैं कि हम स्वर्ग पिता की बेटियां हैं. स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक पर्दा है एक सोना और एक भूलना. ये आवश्यक है हमारे लिए कि संसारिक अनुभव प्राप्त करने ताकि समर्पूर्ति की और प्रगति कर सके और अंत में जान सके अनंत जीवन के उद्धाराधिकार के दिव्य भाग्य. स्वर्ग पिता हमसे प्यार करते हैं और उनकी याद करने में हमें मदद करना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे लिए प्रदान करते हैं अनंत काल की जलकार। देवदूत पॉल ने सिखाया कि आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान है। जो हम हैं उन पर पवित्र आत्मा हमें जलन की देती है। बहुधा पवित्र आत्मा हमसे बात करती है प्रार्थना के समय। प्रभु का उदारता के बारे में सोचो, प्रस्तुत आशीर्वाद को स्वीकार करो, दूसरों की सेवा या दूसरों द्वारा स्नेह और पुष्टि महसूस करती हो।
He talked with God face to face and learned that he was God's son with a special
Moses ne aamne samne ईश्वर से बात की और सीखा कि वो ईश्वर का पुत्र था जिनके पास एक विशेष लक्ष्य था पूर्ति करने के लिए। इस बढ़िया आध्यात्मिक अनुभव के बाद वो जान सके कि शैतान के पास कोई महिमा नहीं थी, पर क्योंकि मौजूद ईश्वर की महिमा महसूस की, वो जान सके कि शैतान के पास कोई महिमा नहीं थी। क्योंकि मौजूद जानते थे कि वो ईश्वर का पुत्र था और ईश्वर के पास उनके लिए एक लक्ष्य था, उनके पास शक्ति और योग्यता की शैतान का विरोध करने के लिए, नए प्रिय निर्णय करने के लिए, ईश्वर से शक्ति मांगने के लिए और उनकी पवित्र आत्मा को लगातार उनके साथ रखने के लिए। वो तरीका हमारे ऊपर लागू है।
मुझे divinely appointed mission that the Lord has for us is through our patriarchal blessings. These are very specific and individual messages we can each receive by the power of the priesthood. Another way to receive spiritual insights about our own eternal natures is from a parent or a leader who can reassure us because of their inspired glimpses into who we really are. The Spirit has whispered very specifically to me on occasion about the true identity of my children. I remember the
मुझे याद है हमारे एक शिशु के जन्म होने से पहले की उस रात मुझ पर सस्पष्ट प्रभाव पड़ा कि ये शिशु अपने प्रत्येक भाई और बहन का के लिए महान दोस्त और सहयोगी रहेगी, हमें अनंत परिवार बनने में मदद करेगी। ये निश्चय पूर्वक सच था। एक बार जब हमारा एक बच्चा बहुत निराश था क्योंकि वो एक गाड़ी दुर्घटना में शामिल था, मैंने सुस्पता से इन शब्दों को अपने दिमाग में सुना, मैं इस संतान से प्यार करती हूँ और उसके जीवन के मार्ग दर्शूंगा। ये मार्गदर्शन बार बार आया। जब उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत हो, मैंने अपने बच्चों की मान और योग्य आनंद आत्माओं की जलंकार से आशीर्वाद पाई है। क्या तुम्हारी माता या तुम्हारे पिता ने कभी तुम्हें याद दिलाई जब तुम घर से जा रही थी कि याद रखना तुम कौन हो? उनका क्या मतलब है? याद रखना कि तुम इस परिवार का भाग हो और नाम बनाए रखना है। याद रखना कि तुम ईश्वर की संतान हो और उसके अनुसार कार्य करना है। प्रचारक एक बैज पहनते हैं उन्हें लगातार याद दिलाने के लिए कि वो यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के प्रतिनिधि है। वो अच्छे और शालीन कपड़े पहनते हैं। वो लोगों के साथ शिष्टता से बर्ताव करते हैं। उनके चेहरे पर उनकी छाया रहती है। उन्हें इन चीजों को करना है क्योंकि वो भारी पहचान लगे हुए है वो नाम का टैग। वादा करना, हम सभी ने अपने ऊपर मसीह का नाम लिया। इसी तरह हम से प्रत्याशा की जाती है कि स्वर्गीय पिता के योग्य बच्चों की तरह कार्य है जिन्होंने लक्षणिक रूप से हमें पृथ्वी पर भेजा। इस चेतावनी के साथ याद रखना तुम कौन हो। जब मैं नियुक्त हुई थी तुम्हारी सेवा करने के लिए इस गिरजा की जवान औरतों की, मैं जानती थी कि मुझे उचित रूप से पेश आना चाहिए। एक दिन मेरी एक बेटी को एक टिकट मिला जिनकी गाड़ी रजिस्ट्रेशन टिकट समाप्त हो चुकी थी। मैंने मामलों को अपने हाथ में लिया और कठोर उद्देश्य से शहर की सरकारी इमारत गई समझाने के लिए कि कागज डाक द्वारा आने वाला है। जब मैं दरवाजे से धृत पूर्वक गुजरी, किसी ने मुझसे कहा, मैं जानती हूँ तुम कौन हो। उससे मैं रुकी और याद हुई कि मुझे याद करने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ, ना कि सिर्फ जवान औरतों की अध्यक्ष पर सब से वे हैं ईश्वर की एक बेटी। सभी संबंध में हमें याद रखना चाहिए कि अन्य भी हमारे स्वर्ग पिता के बच्चे हैं। हमारे शादी की शुरुआत में मेरे पति ने मेरे बहुधा प्रशंसा की, ये कहा, मैंने तुम्हारे रूप के लिए तुमसे शादी नहीं की। अंत में मैंने उसे थोड़ा चिढ़ाया या कहने द्वारा कि सुनने में बहुत चापलूसी है। उन्होंने समझाया जो मैं पहले से जानती थी कि इसका उद्देश्य था सबसे ऊंची प्रशंसा जो वो मुझे दे सकते हैं। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि तुम में जो सहजता और शाश्वत है। ईश्वर ने कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टिकार और ना उसका खड़ की ऊंचाई पर, क्योंकि ईश्वर का देखना मनुष्य सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु ईश्वर की दृष्टि दिल पर रहती है।
But rather character, good values, and each other's inherited divine natures. In a stake in Chile,
के एक स्टेक में जवान औरतें ये करती थी एक दूसरे के अच्छे गुणों पर एक पुस्तक रखने द्वारा। प्रत्येक दिन वो एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हुई और आंतरिक अच्छाई लिखती थी जो वो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति के बारे में सीखती थी। शिविर की समाप्ति में उन्होंने अपने विचार बांटे। प्रत्येक व्यक्ति की मदद की गई ताकि वो अपने अंदर और भी देवता देख सके। उनके नेता ने कहा, हम वास्तव में दयालुता के बदिया स्वभाव और सद्भाव से गिरी हुई थी। मैं ईमानदारी से कह सकती हूँ कि मैंने लड़कियों से शिकायत का एक भी शब्द नहीं सुना। कोई प्रतियोगिता नहीं थी, कोई विवाद नहीं। हमारा शिविर थोड़ा स्वर सा बन गया था। लड़कियां एक दूसरे के दिव्य स्वभाव को पहचानी और पुष्टि की और पवित्र आत्मा शिविर में थी जब ये अच्छे विचार प्रकट किए थे। सीवी लेविस ने बुद्धिमानी से कहा, ये एक गंभीर चीज है कि संभावित देवता और देवियों के समझ में रहना या रखना कि मन बुद्धि और सबसे अरुचिकर व्यक्ति से तुम बात करोगे शायद एक दिन वो व्यक्ति होगा जिसे अगर तुम अभी देखोगे तुम बहुत देखवावे में आसक्त हो आराधना करने के लिए। जवान औरतें सभी जगह पर जो जानते हैं कि वो स्नेह स्वर्ग पिता की बेटियां हैं और उनके प्रति प्यार दर्शती है अच्छे आदर्श जीवन बिताने द्वारा। मैं उन जवान औरतों द्वारा प्रभावित हुई जो अच्छी तरह कपड़े पहने हुए थी ब्राजील के एक बहुत गर्म और आर्द्र भाग में। उन्होंने कहा, शालीनता जलवायु के बारे में नहीं है, वो दिल के बारे में है। मैं प्रभावित हुई आइडहो के उन 5 जवान LDS विद्यार्थियों से जो एक भयंकर दुर्घटना में डूब गई थी। वो उनके साथियों द्वारा जाने जाते थे और उनके समाज में उनके नए प्रिय जीवन आदर्श के लिए और नैतिक गुण और हितकारी बढ़िया उदाहरणों के लिए। मैं प्रभावित हुई एक महिला के उदाहरण से जिसके माता पिता तलाकशुदा थे। वो नहीं चाहती थी कि उसके छोटे भाइयों बहनों को प्यार नहीं महसूस हो, इसीलिए वो उनके साथ प्रत्येक रात प्रार्थना करती और उनसे कहती कि वो उनसे प्यार करती है। ये जवान औरत जानती है कि वो एक स्वर्ग पिता की बेटी है और मैं प्रभावित हुई इन जवान औरतों के कार्यों से कि एक गरीब और राजनीतिक रूप से दुनिया के सताए हुए इलाके में रहती थी। उनकी कठिनाइयों के बावजूद ये जवान औरतें शिविर में मिली और एक योजना बने एक दूसरे की सहायता के लिए। मेरा दिल प्यार से भर जाता है इन जवान औरतों और सभी जगहों की जवान औरतों के लिए। मैं जानती हूँ कि तुम ईश्वर की बेटियां हो जो तुमसे प्यार करते हैं। अंत में मुझे एक अनुभव बताने दीजिए जो कोमल और मेरे लिए पवित्र है। जब पहली बार मुझे नियुक्त किया गया था जवान औरतों की अध्यक्ष के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए, मैंने डर और योग्यता महसूस किया। कई रातों तक मैंने जागती रही, चिंता पश्चाताप करती और रोती हुई। इस तरह की कुछ रातों के बाद मुझे एक बहुत प्रभावशाली अनुभव हुआ। मैंने सोचा शुरू सोचना शुरू किया अपनी जवान औरतें, भतीजी, भांजियों पर, फिर मेरे पड़ोस और वोट के जवान औरतों पर, फिर उन जवान औरतों पर जिन्हें मैं हाई स्कूल में नियमित रूप से देखती थी, और फिर मैंने दुनिया भर की जवान औरतों के बारे में सोचा, वो जो आधा करोड़ से भी अधिक थी। सबसे बढ़िया स्नेह भावना मुझे घेरना शुरू की और मेरे ऊपर उमर पड़ी। मुझे इतना अधिक प्यार महसूस हुआ उनके लिए, प्रत्येक के लिए, और मैं जानती थी कि जो मैं महसूस कर रही थी वो उनके लिए हमारे स्वर्ग पिता का प्यार था। वो शक्तिशाली थी और मुझे घिरी हुई थी। पहली बार मैंने शांति महसूस की, क्योंकि मैं जानती थी कि स्वर्ग पिता क्या चाहता था कि मैं करूं। मैं कर सकती थी। वो चाहते थे कि मैं तुम्हें गवाही दूं जो तुम्हारे प्रति उनके महान प्यार है, और फिर से तुम्हें गवाही देती हूं बिना किसी किचकिचाहट से कि मैं जानती हूँ कि स्वर्गीय पिता तुम्हें जानते हैं और तुमसे प्यार करते हैं। तुम उनकी विशेष पुत्री हो। उनके पास तुम्हारे लिए योजना है और वो हमेशा तुम्हारे नेतृत्व करते हैं, तुम्हें मार्गदर्शन और तुम्हारे साथ चलेंगे। मैं ये सब यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, आमीन। हम अभी खुशी के साथ सिस्टर जूली बी बेक फर्स्ट काउंसलर जनरल यंग वुमन के प्रेजेंस से सुनेगी, उसके बाद बहन एलेन डाल्टन से सुनेंगे। बहन डाल्टन के बाद गायक मंडली गाएगी आई स्टैंड ऑल अमेज, साथ में फ्लूट पर रहेगी कैथलीन एलिंगसन जो सॉल्ट लेक हॉलिडे साउथ स्टेक के, और हाफ पर रहेगी सेरा एडवर्ड जो नॉर्थ सॉल्ट लेक यूटा स्टेक की है। सिस्टर बैक,
thank you, Young Women Choir, for that beautiful song. I am grateful.
मैं अपने उद्धारकर्ता के लिए आभारी हूँ, और जो निमंत्रण हम सभी को मिला कि मसीह में आइए और उनमें संपन्न हो। मुझे आशा है कि मैं तुम तक वो कुछ पहुँचा सकूँ जो उन्हें याद करने, पश्चाताप और बदलने पर सोचती और महसूस करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छी तरह वो अभिव्यक्त कर सकती हूँ जो मेरे दिल में है तुम्हें तीन महिलाओं के बारे में बदलाने और उनकी कहानियों से सीखे हुए सबकों की चर्चा करने द्वारा। मैं शुरू करूंगी रूथ मे फॉक्स से, जो जवान औरतों की महादेश की कई वर्ष पहले। वो उस नियुक्ति पर सेवा 84 वर्ष की आयु तक प्रदान करती रही। बहन फॉक्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ था जब वो 13 वर्ष की थी। उसकी माता और मर चुकी थी जब वो शिशु थी, इसीलिए उसने अपने जीवन की प्रथम 12 वर्ष कई बहन बिना परिवार के साथ बिताना पड़ा। उससे संभलना कठिन होगा क्योंकि उसकी आजी उसे बुरी लड़की कहती थी। आखिरी में रूथ का विवाह हुआ और उसके 12 बच्चे हुए। उसने अपनी अतल गवाही को अपने बच्चों के साथ बांटना और सुसमाचार पर पाठ सिखलाना जब वो उनके पास काम करती थी, पर वो स्वीकार करती है कि उसके बड़े बच्चों को कभी कभी सख्त अनुशासन प्राप्त हुआ क्योंकि वो आसानी से गुस्सा जाती थी और वो हमेशा 10 सेकंड तक इंतजार नहीं करती थी। बहन फॉक्स 104 वर्ष की आयु तक जीवित थी। अपनी लंबी जिंदगी में उसने महान आनंद और कठिन मुसीबतों का अनुभव किया और उसने सिखलाया कि जीवन कुछ कठिन सबक लाता है। पिछले वर्ष मैंने वायोमिंग में इंडिपेंडेंस रॉक पर चढ़ी ये पता लगाने के लिए कि बहन फॉक्स ने कहां 13 वर्ष की आयु में अपना नाम लिखा था। पिछले 140 वर्ष के मौसम ने उसे लगभग मिटा दिया है, पर मैंने मुश्किल से पढ़ सकती थी रूथ में 1867। मैं इस महान नेता और यीशु मसीह की अनुयायी के बारे में मैं और भी जानना चाहती थी, जिससे अपना पूर्ण जीवन काम किए अपने आप को सुधरता के लिए और जिसके आदर्श वाक्य था ईश्वर के राज या कुछ भी नहीं। अगली कहानी है एक महिला की जिससे मैं मेरी कहूंगी। वो एक वफादार आगुआ माता पिता की बेटी थी जिसे सुसमाचार के लिए बहुत कुछ का त्याग किया था। उसका विवाह मंदिर में हुआ था और वो 10 बच्चों की माता थी। वो एक प्रतिभा संपन्न महिला थी जिसे अपने बच्चों को प्रार्थना करना, कठिन कार्य करना और एक दूसरे के प्यार करना सिखलाया था। वो कहती थी कि ईश्वर मुझे एक छोटी प्याली कॉफी के लिए स्वर से बाहर नहीं रखेगा, पर उस छोटी प्याली कॉफी के कारण वो मंदिर सिफारिश के लिए योग्य नहीं थी और ना ही उसके वो बच्चे जो उसके साथ कॉफी पीते थे। फिर भी अच्छी बूढ़ी उम्र तक रह सकी और आखिरी में योग्य हुई फिर से मंदिर जाने और उसमें सेवा प्रदान करने के लिए। उसके 10 बच्चों में से सिर्फ एक योग्य मंदिर विवाह हुआ और उनके वंश के कई सदस्य जो अब 5वीं पीढ़ी में हैं, पुनर्स्थापित सुसमाचार के आशीर्वादों के बिना है जिन पर वो विश्वास करती थी और उनके पूर्वजों ने जिसके लिए बहुत त्याग किया था। अंतिम कहानी कृष्णा के बारे में है जिसका बपतिस्मा हुआ था और अपने परिवार के साथ सील हो चुकी थी जब वो एक जवान लड़की थी, पर उसके कुछ समय बाद परिवार सुसमाचार का पालन करना बंद कर दिया। अब वो अपनी किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में थी और वो कुछ गलत चुनाव कर रही थी और बहुत दुखी थी। एक दिन मैंने उसे एक व्यक्तिगत प्रगति पुस्तक दी और कहा, ये पुस्तक तुम्हारी मदद करेगी तुम्हारे जीवन में मसीह को गुनाह को सम्मानित करने में, ताकि तुम अपनी इच्छा का बदला ला सको। मैं तुमसे आमंत्रित करती हूँ कि आज अपनी पुस्तक में काम करना शुरू करो। उस रात उसने अपनी आंखों में आंसू के साथ कहा, आज मैंने अपनी व्यक्तिगत प्रगति की शुरुआत की। उस दिन के बाद उसने मुझे कुछ बार लिखी है। वो रविवार सभा अपनी आपासी और सेमिनरी में जाने लगी है। इस प्रकार कौन सबक मैंने सीखी है इन्हें याद करने, पश्चाताप करने और बदलने की कहानियों से सीखा। प्रथम सबक है कि सभी गलतियां करते हैं। कुछ समय पहले मैं एक 8 वर्षीय लड़की के साथ उसके बपतिस्मा में थी। दिन की समाप्ति में उसने पूरे आत्मविश्वास से के साथ कहा, मैंने पूरा दिन बपतिस्मा लिया और मैंने एक बार भी पाप नहीं किया। पर उसके संपूर्ण दिन हमेशा के लिए नहीं था और मैं निश्चित हूँ कि अब वो सीख रही है, जैसे हम सभी सीखते हैं, कि जितनी कठिनाई से हम कोशिश करें, हम हमेशा प्रत्येक बुरी स्थिति, प्रत्येक गलत चुना से बच नहीं सकते। ये उस तरह अपने आप की नियंत्रण नहीं कर सकती जैसे हमें करना चाहिए। किशोर किशोरियां विशेषकर आसानी से गलतियां करते हैं, क्योंकि शैतान की शक्ति वैश्विक है और वो अपने प्रथम आवश्यक चुनाव कर रहे हैं। मोमन की पुस्तक में यही कोरिएंटन को हुआ था। कोरिएंटन को एक वफादार मिशन में सेवा करनी थी, पर उसने सोचा कि वो बहुत मजबूत था और बहुत चतुर था, खतरनाक स्थितियों और बुरी संगत से निपटने के लिए, और वो बड़ी समस्या और बड़ा पाप में फंसा जब वो गलत स्थान जाने लगा, गलत लोगों के साथ गलत चीजों करने लगा था। मेरा दूसरा सबक है कि पश्चाताप ऐच्छिक नहीं है। हमें पश्चाताप करने का आदेश दिया गया है। उधारकर्ता ने सिखाया कि जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे और छोटे बच्चे की तरह नहीं बनेंगे, हम किसी भी तरह राज्य के उधारकारी नहीं रहेंगे। एक छोटी प्याली कॉफी, एक बुरी आदत, एक बुरा चुनाव, एक गलत निर्णय के कारण हमें पूरा जीवन भर के लिए सुसमाचार के मार्ग से दूर नहीं होने चाहिए। मैंने सुना है कुछ लोगों को कहते हुए कि पश्चाताप करना बहुत कठिन है। अन्य कहते हैं कि वो दोषी होने के कारण थक चुके हैं, कि उन्हें लीडर द्वारा अपमान किया गया है। कभी कभी लोग हार मान लेते हैं जब वो गलतियां करते हैं और विश्वास करते हैं कि उनके लिए कोई आशा नहीं है। शैतान ही आशाहीन विचार रखते हैं उनके दिलों में जिन्होंने गलतियां की है। ईश्वर हमेशा आशा देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हें ईश्वर के कार्य करने के लिए चुना गया था, पर पाप के कारण अगर तुम जानकार नहीं हो, तुम गिरोगे। पर याद रखना, ईश्वर दयालु है, इसीलिए उस पर पश्चाताप कीजिए जो तुम्हें किया है, जो मेरे दिए हुए आदेश के विरुद्ध है, और तुम अब भी चुने हुए हो और फिर से काम पर बुलाए गए हो। खुशियों और शक्ति से का सबसे आसान फर्तीला मार्ग है पश्चाताप और परिवर्तन करना, हम जितना जल्द कर सके। तीसरा सबक है, हम अकेले नहीं हैं। खुद सभी वास्तविक बदलाव लाना संभव नहीं है। जब हम गलतियां करते या बुरा चुनाव करती है, जीवन को उचित मार्ग पर लौटने के लिए हमें उधारकर्ता की मदद चाहिए। हम हर सप्ते प्रभु भोज लेते हैं, हमें बदलने के लिए, उनकी शक्ति पर अपना विश्वास प्रदर्शित करने के लिए। जब हमारे सबसे अच्छी कोशिश पर्याप्त नहीं होती है, उनकी कृपादर्शी द्वारा हम कोशिश करने की शक्ति प्राप्त करती है। ईश्वर कहते हैं, अगर इंसान हमारे पास आएंगे, मैं उन्हें उनकी कमजोरियां को दिखलाऊंगा। मैं इंसान को कमजोरियां देता हूं ताकि वो विनम्र रहे, और मेरी कृपादृष्टि पर्याप्त है सभी इंसान के लिए जो मेरे सामने अपने आप को विनम्र करते हैं। जब हम अपने आप को बदलने के लिए ईश्वर की मदद ढूंढते हैं, तब हमारे पास ये वादा है, जिसने अपने पापों का पश्चाताप किया उस व्यक्ति को माफ किया जाएगा, और मैं ईश्वर उसके पापों को फिर याद नहीं रखता है। ईश्वर हम पर हार नहीं मानता। वो कहते हैं, मेरे पास आइए जो तुम कार्य करते और जो भारी बोझ से है, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो आनंद और शांति हम प्राप्त करते हैं जब हम जानते हैं कि हमें माफी दे दी गई है, वो एक दिव्य आशीर्वाद है। वो शांति ईश्वर के समय और उनकी तारीख से आती है, पर वो आती है। मेरा अंतिम सबक है, हम बदल सकते हैं। प्रत्येक एक दिन नया मौका है अपने उद्धारकर्ता को याद करने का और उनके उदाहरण अपनाने का। बिना पश्चाताप करे हम प्रगति नहीं कर सकते। वो वही कारण पश्चाताप सुसमाचार का दूसरा सिद्धांत है। फ्रांसिस स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल ने कहा, मसीहा जैसे गुनाहों को विकसित करने के लिए बहुत और कठोर कार्य करना पड़ेगा उसके लिए नहीं है जो कभी कभी कार्य करते हैं, और या उसके लिए नहीं है जो बराबर अपनी पूरी कोशिशें नहीं करेगा। मैंने क्रिस्टीना से सीखा कि मसीहा जैसे गुण को अपने जीवनों में विकसित करना वो चीना है कि हम बदल रहे हैं। पश्चाताप ऐच्छिक नहीं है, पर हम उसे अकेले नहीं करते हैं। हमारे पास उद्धारकर्ता है जो हमें पश्चाताप करने में मदद करेगा, अपने जीवन में उनके गुनाहों को विकसित करने के द्वारा हम जानेंगे कि हम बदलाव ला रहे हैं। बहन फॉक्स ने कहा कि सुसमाचार उसका संरक्षक था जो उसे बेकवस के सुरक्षित रखता है। उसने उसका आदर्श वाक्य था, ईश्वर का राज या कुछ भी नहीं। उद्धारकर्ता ने हम सभी को दिया था, जो भी मेरे नाम से पश्चाताप करेगा और बपतिस्मा लेगा वो संपूर्ण होगा, और अगर वो अनंत तक बर्दाश्त करेगा, देखिए मैंने उसे अपने पिता के सामने निर्दोष रखूंगा उस दिन जब मैं दुनिया का नहीं करूँगा। पश्चाताप द्वारा मैं उद्धारकर्ता को जान सकी, और जब मैं अपने आप को बदलने के लिए उसकी मदद ढूंढती हूँ, उन पर मेरा विश्वास और निर्भरता में वृद्धि होती है। मैं उनकी वास्तविकता और शांत शक्ति की गवाही देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
Thank you, Sister Beck. I love these virtuous women. On one of the trails in a canyon near
my home, मेरे घर के पास एक कैनियन में एक मार्ग पर एक चीना है जो कहता है, मार्ग पर रहिए। जब कोई उस मार्ग पर चलना शुरू करता है, जल्द ये स्पष्ट हो जाता है कि वो एक अच्छी सलाह है। वहाँ पहाड़ी और मोड़ और ढालू इलाके हैं, और कुछ जगहों पर मार्ग की दूसरी और जमीन अस्थिर है, और वर्ष के कुछ समय में आवासिक शैलास्नाप सांप दिखलाई देता है। आज रात मेरा संदेश तुम प्रत्येक के लिए वही चीना वाला संदेश है, मार्ग पर रहिए। कुछ वर्ष पहले मैंने जवान औरतों के दल के साथ वायोमिंग के टीटोन पहाड़ पर बैकपैकिंग यात्रा के लिए गई थी। वो एक कठिन लंबी पड़ यात्रा थी, और दूसरे दिन हम उस लंबी पड़ यात्रा के सबसे खतरनाक भाग पर पहुंची। हमें हरिकन पास पर पड़ यात्रा करनी थी, उपयुक्त नाम दिया गया, क्योंकि वहां जो लगभग हमेशा तेज हवा चलती थी। हमें आदेश दिया गया था कि एक रेंजर द्वारा की मार के बीच में रहना, और रास्ते के असुरक्षित भाग में जितना संभव हो उतना नीचे होकर चलना।
And do you know, not one of them asked how close to the edge.
और क्या तुम जानते हो, उनमें से किसी ने मुझे नहीं पूछा कि किनारे के कितना करीब वो जा सकते हैं। कभी कभी जब हम जीवन के मार्गों पर चलती है, हम खतरनाक जगहों पर समय बर्बाद करना चाहती है ये सोचती हुए कि वो मजा और रोमांचक है और सोचती कि हम नियंत्रण में है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम बुरा कर सकती हैं और अपनी नैतिकता को बनाए रख सकती है। जैसे भविष्यवक्ता जोसमित ने हमें बतलाया, खुशियां हमारे अस्तित्व के लक्ष्य और उद्देश्य है। धर्मशास्त्र और वादे भाग 25 में एमा स्मिथ के लिए ईश्वर की सलाह उनकी सभी बहुमूल्य बेटियों के लिए उनकी सलाह है। उसे ईश्वरीय वचन में हमें विस्तृत आदेश दिए गए हैं और सलाह दी गई है कि नैतिक गुण के मार्गों पर चला जाए। उसी प्रकार किया है ऊंचे सहचार संबंधित सिद्धर जो हमें गुणवान होने में मदद करते हैं। नैतिक गुण में शालीनता सम्मिलित है, विचार, भाषा, पोषक और आचरण में। जैसे कोई मार्ग पर खाली पैर नहीं चलता, जैसे जहरीले सांप होते हैं, उसी तरह आज की दुनिया में आवश्यक है हमारी अपनी सुरक्षा के लिए विनम्र होना। जब हम विनम्र होते हैं, हम दूसरों को दिखलाते हैं कि हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ संबंध को समझते हैं उनकी पुत्रियों के रूप में। शालीनता नए फैशन का नहीं होना है, वो है पवित्र होना। वो फैशन वाला नहीं होना है, वो है वफादार होना। वो लोकप्रिय नहीं होना है, वो है शुद्ध होना और वादों का पालन करना। वो लोकप्रिय नहीं होना है पर पवित्र होना है। शालीनता में अपने कदमों को शुद्धा और नैतिक गुण के मार्ग पर सुरक्षित रखना है। और मोरोनाई हमें समझने में मदद करते हैं कि दोनों नैतिक गुण और शुद्धता सभी चीजों में सबसे प्रिय और बहुमूल्य है। हम बहुत लापरवाह या खतरे के करीब नहीं हो सकते। वो खतरनाक जमीन है ईश्वर की किसी भी बेटी के चलने के लिए। धर्मशास्त्र और वाद के भाग 25 में सलाह दी गई है, पूर्ति का मतलब मेरे लिए है चुपके रहना, जुड़ जाना और वास्तव में वादों को अच्छी तरह पकड़े रहना जिन्हें हम ईश्वर से करते हैं। हमारे वादा है मजबूत करेंगे बेकाव का विरोध करने के लिए। जब हम उन वादों को पूर्ति करेंगे जिन्हें हमें बपतिस्मा का समय किया था, हम मार के बीच में रहेंगे। एल्डर हॉलैंड ने कहा, हमारे बपतिस्मा के साथ शुरू करके हम वादा करते हैं, जब हम इस अनंत जीवन के मार्ग को अपनाते हैं और हम उन वादों की पूर्ति करने द्वारा मार्ग पर रहते हैं। कई बार हमारे मार्ग कठिन होते हैं, पर जो मदद हम प्राप्त करते हैं चुनौतियों पर काबू पाने के लिए, वो यात्रा रूप से ईश्वर है। परमेश्वर के तीन सदस्य हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारी मदद करते हैं, क्योंकि जो वादे हमने किया है उन वादों पर हमें याद दिलाने के लिए हम प्रत्येक सप्ताह प्रतिभोज लेते हैं। ब्रेड पर दी गई प्रार्थना में है, अनंत पिता परमेश्वर, हम तुम्हारे पुत्र के नाम अपने ऊपर लेने के लिए तत्पर हैं और उसको साधा समर रखते हुए उसकी उन आज्ञाओं का पालन करते हैं जिन्हें उसने उनको दी है। पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन से तुम खुशी रहोगे और नैतिक गुण निरंतर तुम्हारे विचारों में रहेगा। And surely there could not be a happier people among all the people who had been created by the hand of God. Guided by the पवित्र आत्मा द्वारा मार्गदर्शन पाकर तुम भी दूसरों पर धार्मिक प्रभाव डालोगी। मेरे दफ्तर में मेरे परिवार की कई पीढ़ियों की औरतों की तस्वीर है, मेरे परनानी, मेरे माता मेरी बेटी एमी। योजना में उनके वचनबद्ध और विश्वास की जीवन से मुझे मदद मिली ऊंचाई पहुंचने में और सफर में आगे बढ़ने के लिए। अब उस तस्वीर को देखकर मैंने एक जीवन जीने के महत्व को स्पष्टता से देख सकती हूँ। आज मेरे पास सिर्फ एक बेटी नहीं है पर 5 बहुएं और 5 पोतियां जो उस तस्वीर में मिलित है। उनके सामने नैतिक गुण और पवित्र के आदर्श जीवन जीने के बड़ी जिम्मेदारी में महसूस करती हूँ। चाहे तुम आने वाली पीढ़ियां में प्रथम हो, तुम्हारे पास तुम्हारे वंश के प्रति जिम्मेदारी भी है।
Recently, I embarked on that same hike in the Tetons I spoke of earlier.
हाल ही में मैं टीटोन की वही पहाड़ यात्रा पर गई जिसका वर्णन मैंने पहले किया था। सिर्फ इस बार अपने पति और अपने उम्र की दोस्तों के दल के साथ। मैंने शारीरिक रूप से पहाड़ यात्रा के लिए तैयार नहीं करी थी।
And I had packed my equipment carelessly and taken too much.
मेरे बैग के बोझ से मैं थक गई थी और हार मानने वाली थी। अन्य भी ऊंची उसी तरह कठिनाई की सामना कर रहे थे। मेरे पति ये जान गए और जल्द आगे चले गए। मैंने प्रत्येक महसूस किया। फिर भी आधे घंटे के बाद मैं देख सकी कि मेरे पति घटी से दूरी और से रास्ते से नीचे आ रहे थे। वो मेरी ओर दौड़ रहे थे। जब वो मेरे पास पहुंचे, उसने मुझे मेरे बैग लिए, मेरे आंसू पोंछे और मुझे मंजिल तक ले गया। स्पष्ट और साफ झील जो पीन के पेड़ों से घिरे हुए थे। फिर वो घूम के पीछे रास्ते पर गए और 4 बार वही चीज किया अन्य पदयात्रियों के लिए। जब मैं उसे देख रही थी, मैंने दुखी की थी क्योंकि मैं तैयार नहीं थी और भी दुखी थी क्योंकि मेरे बैग में कई चीजें थी जिनसे उन्हें मुझे ले जाते समय और भी बोझ उठाना पड़ा। पर मैंने उसकी शक्ति, उसकी निस्वार्थता, उसकी तैयारी और उसके प्यार के लिए भारी थी। जब तुम जीवन के पहाड़ों पर चलती हो, नैतिक गुण के मार्ग पर रहिए। अन्य लोग तुम्हारी मदद करने के लिए रहेंगे, तुम्हारे माता पिता, परिवार सदस्य, बिशप, सलाहकार और नए प्रिय दोस्त सभी तुम्हारे साथ रहे। अगर तुम थक जाओगी या गलती करोगी, अपनी दिशा बदलिए और नैतिक गुण के मार्ग पर चलिए। वो तुम्हें पश्चाताप करने में समर्थ करेंगे, तुम्हें मजबूत करेंगे, तुम्हारे बोझ कम करेंगे, तुम्हारे आंसू पोंछेंगे, तुम्हें आराम देंगे और मार्ग पर रहने के लिए लगातार तुम्हारी मदद करेंगे। उधारकर्ता नैतिक गुण के सुपर उदाहरण है। जब यीशु पैलेस्टाइन के रास्तों पर चले, वो अच्छाई करते गए। उन्होंने रोगियों को चंगा किया और उन्हें अंधे को रोशनी दी और मृत को जीवित किया। उन्होंने अनंत काल की सच्चाइयों पर हमारे मरणशील से पहले जीवन के अस्तित्व की वास्तविक पृथ्वी पर हमारे जीवन के उद्देश्य पर और आने वाले जीवन में ईश्वर की बेटियां होने की हमारी संभाव पर सिखलाया। मैं गवाही देती हूँ कि यह सच है। उन्हें सिर्फ मार पर निशान नहीं लगाए पर उन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरी मदद की। उनका मार्ग वो रास्ता है जो इस जीवन और आने वाली दुनिया के अनंत जीवन में खुशियाँ की और नेतृत्व करेगी। मैं तुम्हें अपने गवाही देती हूँ कि वो जीवित है। वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगी, वो और तुम्हारे कदमों को मार्गदर्शन है। यीशु मसीह हमारा उदाहरण और मार्गदर्शक है। मार्ग पर रहिए, विनम्र रहिए, अपने वादों की पूर्ति कीजिए। ईश्वर वादा करते हैं, अच्छी मनोदर्शक की रहिए क्योंकि मैं तुम्हारा नेतृत्व करूँगा। राज्य तुम्हारा है और राज्य की आशीर्वाद तुम्हारा है। वास्तव में मैं आश्चर्य खड़ी हूँ उनके महान प्रश्चित्याप के सुपर्ण जीवन और अनंत शक्ति के लिए। यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हम उन सभी को शुद्ध हृदय से कृतज्ञता अर्पित करते हैं जिन्होंने इस शाम भाषण दिए और सुंदर संगीत प्रदान किया। अब हमारा विशेष अधिकार होगा कि प्रेजेंट गोर्डन बी हिंकली से सुने हमारे परम प्रिय भविष्य वक्ता। प्रधान हिंकली के भाषण के बाद इस सभा की संपत्ति होगी जब गायक मंडली और सभा गाएगी एज जायंस यूथ इन लेटर डेज। फिर रोजेन बेसेट द्वारा प्रार्थना की जाएगी सॉल्ट लेक जॉर्डन नॉर्थ स्टेक की। प्रेसिडेंट हिंकली।
My dear young women,
मेरी प्रिय जवान महिलाएं, कितना बढ़िया दृश्य है कि तुम इस महान सभा भवन में हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी माताएं और शिक्षक हैं। इस सम्मेलन केंद्र के बाहर कई सौ और हजार और दुनिया भर में इकट्ठा हुए हैं। वो हमसे भी इससे ज्यादा भाषाओं में सुनेंगे। हमारे भाषण का अनुवाद उनकी अपनी भाषाओं में होगा। तुमसे बात करने का मौका एक बड़ी जिम्मेदारी है, पर यह एक बढ़िया मौका भी है। जो मैं कहूँगा उसके लिए मैं पवित्र आत्मा के निर्देशन के लिए प्रार्थना करता हूँ। अन्य ने उचित रूप से इस सभा के उद्देश्य पर भाषण दिया है। मैं सिर्फ वर्णन करता हूँ। यह ईश्वर का प्रकट किया शब्द है जो धर्म सिद्धांत और वादा के 121वें भाग में पाया जाता है। नैतिक गुण तुम्हारे विचारों को निरंतर सजाएं, फिर तुम्हारा विश्वास मजबूत होगा ईश्वर की उपस्थिति में, और पुरोहिती की धर्म सिद्धांत तुम्हारी आत्मा को भरेगा जैसे स्वर्ग से आए ओस। पवित्र आत्मा तुम्हारा लगातार साथी होगी और तुम्हारी छड़ी में बदलने वाली छड़ी धार्मिकता और सच्चाई की, और तुम्हारा राज सदा रहने वाले राज्य और बिना जोर के तुम्हारे राज्य आएंगे तुम्हारे लिए हमेशा और हमेशा के लिए। ईश्वर के वचन के इन उल्लेखनीय शब्द की तुलना में क्या महान वादा हो सकता है? ये ईश्वर के शब्द हैं भविष्यवक्ता जोसेफ को प्रकट किए गए। ये शब्द अपने साथ रखते हैं एक शानदार वादा सभी लिए जो विचारों को निरंतर सजाते रहेंगे। तुम जवान औरतें भी अपने जीवन की शुरुआत में हो। तुम पर्याप्त उम्र की हो बैप्टिज्म के लिए। तुम इतनी जवान हो कि इस भविष्य दुनिया की तुम सपना देखती हो अभी तुम्हारे सामने है। तुम प्रत्येक ईश्वर की संतान हो। तुम प्रत्येक ईश्वर प्राणी हो। तुम वास्तव में ईश्वर की पुत्री हो। तुम्हारी संभावना की कोई सीमा नहीं। अगर तुम अपने जीवनों पर नियंत्रण रखोगी, भविष्य मौके और खुशियों से भरे हैं। तुम अपनी योग्यताओं के अपने समय को बर्बाद नहीं कर सकती। महान मौके आएंगे तुम्हारे लिए। अब मैं तुम्हें एक बहुत सरल तरीका देता हूँ जिसका अगर पालन किया जाएगा वो तुम्हारी खुशियों का आश्वासन देगा। यह एक साधारण चार विषय कार्यक्रम है। यह इस तरह है: एक, प्रार्थना; दो, अध्ययन; तीन, अपनी टाइडिंग देना; और चार, अपनी सभाओं में भाग लेना। पहले विषय के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रार्थना। तुम हमारे स्वर्गीय पिता की बेटी हो। वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। उनसे बात कीजिए। प्रत्येक रात और सुबह अपने घुटनों पर हो जाइए और अपने दिल का आभार उनसे प्रकट कीजिए। उन आशीर्वादों पर कहिए जिसकी तुम्हारी इच्छा और जरूरत है। कभी मत भूलना कि गिरजाघर की शुरुआत एक लड़के जोसेफ स्मिथ की विनम्र प्रार्थना से हुई थी, उसके पिता के खेत के वृक्षण के पास। उस उल्लेखनीय अनुभव से, जिसे हम प्रार्थना दिव्य दृष्टि कहते हैं, ये कार्य बड़ा जब आज 160 देशों में स्थापित है, 12 करोड़ से अधिक सदस्यता के साथ। यह डैनियल की दिव्य दृष्टि की पूर्ति है कि एक पत्थर बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर पूरी पृथ्वी को भर दिया। ना ही तुम सिर्फ अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना अर्पित कर सकती हो, पर परिवार प्रार्थना के लिए अपने माता पिताओं को प्रोत्साहित कर सकती हो। प्रार्थना वो तरीका है जिसे हम अपने स्वर्ग के पिता तक पहुंचते हैं। उसे कुछ खर्च नहीं होता। उसके लिए जरूरी है विश्वास और कोशिश। घुटनों पर होकर विनम्र प्रार्थना करने से बढ़कर इनाम कुछ नहीं है। उसे ईश्वर के लिए प्यार प्रदर्शित होता है, वो सभी अच्छी चीजें देने वाले हैं। प्रार्थना खुद के लिए आदर प्रदर्शित करता है, उसकी जगह कोई दूसरी चीज नहीं। वह एक व्यक्तिगत संचारण है ईश्वर के साथ। मेरी सूची में दूसरा विषय है अध्ययन। इस साधारण शब्द में क्या सम्मिलित है? प्रथम है धर्मशास्त्रों का अध्ययन। तुम शायद पुराने नियम को थोड़े भाग पढ़ोगी, पर उसमें महान सबक है। नए नियम में कई महान सबक हैं। उसमें चार सुसमाचार सम्मिलित हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, एक्ट्स ऑफ अपॉसल्स और अन्य लेख। कोशिश कीजिए सिर्फ एक सुसमाचार पढ़ने की, शायद जॉन की पुस्तक। जब तुम वो समाप्त कर लोगी, मॉर्मन की पुस्तक उठाइए। 2 वर्ष पहले मैं पूरे गिरजाघर से चुनौती की थी कि वो मॉर्मन की पुस्तक पढ़ें उस वर्ष की समाप्ति से पहले। यह आश्चर्य है कि कितने लोगों ने चुनौती को पूर्ति की। जिन सभी ने उसको उसकी कोशिश के लिए आशीर्वाद मिला। जब वो पूरी तरह सम्मिलित हो जाते हैं, ये हमारे मुक्तिदाता की गवाही के अतिरिक्त उनके दिल प्रकाशित हुए और उनकी आत्माएं प्रभावित हुईं। तुम में से कुछ बहुत छोटी थी तब पढ़ने के लिए, पर तुम अभी पढ़ना शुरू करने के लिए बहुत छोटी नहीं हो। धार्मिक अध्ययन के अतिरिक्त वहाँ शिक्षा की चुनौती है। अभी संकल्प कीजिए जब तुम जवान हो कि तुम सभी शिक्षा प्राप्त करोगी जो तुम हासिल कर सकती हो। हम बहुत मुकाबले वाले समय में हैं और वो सिर्फ और भी मुकाबला भरा होगा। शिक्षा वो चाबी है जो मौके के दरवाजे को खोलेगी। तुम शायद विवाह पर योजना बनाओगी और उसके लिए आशा करोगी, पर तुम निश्चिंत नहीं कि वो होगा। और यद्यपि तुम शादी करोगी, शिक्षा तुम्हारे लिए बहुत लाभ रहेगी। तुम रास्ते से दूर मत जाओ ताकि दिन आएंगे और जाएंगे तुम्हारे जीवनों में बिन सुधार के। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद देंगे जब तुम कोशिश करोगी। तुम्हारे जीवन में सुधार होगा और तुम्हारा दृष्टिकोण में वृद्धि होगी जब तुम्हारे दिमाग ने अनुभवों से ज्ञान के लिए खुलेंगे। अगला विषय है टाइदिंग भरना। शानदार है ईश्वर का वादा जो उनसे संबंधित है जो अपने टाइड्स देते हैं। वो आधुनिक ईश्वरीय वचन में कहते हैं कि वो नहीं जलेंगे। उनका महान वादा मैलकाई के शब्दों में पाया जाता है। उन्होंने कहा, क्या इंसान ईश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुमने मुझे लूटा, पर तुम कहते हो कहां मैंने तुम्हें लूटा, टाइज और बेंटों में। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का ईश्वर ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जरोखें तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। और फिर वो कुछ बहुत रुचिकार कहते हैं, इसे सुनिए। मैंने तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा गुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और तुम्हारी दखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के ईश्वर का यही वचन है। तब सारी जटाएं तुम्हारे धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। जबकि टाइदिंग पैसे के साथ दी जाती है, सबसे आवश्यक है उसे विश्वास के साथ भरा जाए। मैंने कभी किसी व्यक्ति से नहीं मिला जिसे एक वास्तविक टाइद दिया और उससे शिकायत की, बल्कि उसने ईश्वर पर अपना विश्वास रखा और ईश्वर उसे असफल नहीं किया। जब मैं एक छोटा लड़का था, प्रत्येक दिसंबर मेरे पिता हमें रास्ते के पास पार बिशप डंकन के घर ले जाते थे टाइडिंग समझौता के लिए। उनके पास वार्ड इमारत में कोई दफ्तर नहीं था और इसलिए उसे अपने घर पर ऐसा करना पड़ता था। हम सभी उसकी बैठक में बैठते थे और एक के बाद वो हमें डाइनिंग कमरे में आमंत्रित करते थे। हमारी टाइडिंग शायद 25 सेंट थी या 50 सेंट, पर वो पूरी टाइडिंग थी। वो एक रसीद लिखते और वार्ड अभिलेख में रकम अभिलिखित करते थे। रकम इतनी कम होती थी कि टाइडिंग का अभिलिखित करना टाइडिंग देने का रकम से ज्यादा था, पर उससे एक आदत स्थापित हुई कि लगातार इन सभी वर्षों तक चलती रही। टाइडिंग देने से कई आशीर्वाद मिले, जैसे ईश्वर ने वादा किया था। मेरे विवाह डिप्रेशन के समय हुआ था, जब पैसे अपर्याप्त थे, पर हमने अपनी टाइडिंग दी और किसी तरह भूखे नहीं या किसी जरूरी चीज की कमी नहीं थी। चौथा विषय, अपनी सभाओं में भाग लीजिए। ईश्वर के बोझ के प्रभु बोझ लेने की जगह कोई और नहीं ले सकता। यह एक शानदार पवित्र और बढ़िया कार्य है कि ब्रेड और पानी लिया जाए सके, मानव के उदारकर्ता के शरीर और रक्त की याद में। हमारे ईश्वरीय मुक्तिदाता के परिश्चित त्याग की महत्व की तरह मानव इतिहास में कोई और घटना नहीं है। कुछ और उसके साथ तुलना नहीं कर सकती। उसके बिना जीवन अर्थहीन होगा, वो बिना उद्देश्य की यात्रा होगी। मौत अंत नहीं है, पर एक और भी शानदार अस्तित्व में जाना है। इन सभी का संकेत प्रभु बोझ लेने में है। हमारी सभाओं में बड़ी सभी वस्तुएं कम महत्व रखती हैं हमारे ईश्वर के त्याग के सूचक चिन्ह की तुलना में। अगर तुम इन चार चीजों को करोगी, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा जीवन लाभप्रद होगा, तुम्हारी खुशियां महान रहेंगी, तुम्हारी पूर्तियां सभी तरह से बढ़िया और संतोषप्रद होंगी। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, मेरी प्रिय जवान बहनों। उनके आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हर समय और सभी स्थिति में हो। और स्वर्ग तुम्हें देखकर मुस्कुराए, मैं विनम्र से प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन।
हे हमारे प्रिय पिता परमेश्वर, हम आभारी हैं कि हमें इस मौका मिला कि हम इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। हम आभारी हैं अपने लीडर्स के लिए। हम आभारी हैं हमारे वार्ड और स्टेक लीडर्स के लिए। हम आभारी हैं अपने प्रॉफिट के लिए। हम मांगते हैं कि आप उन पर आशीष दें। हम आपसे ये मांगते हैं कि हमें मदद करें कि हम जिन चीज़ों को आज रात को सुने हैं कि हम उसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। हम मांगते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं और आभारी है कि हम इस गिरजा के सदस्य हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।